आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
महाभारत के पात्रों में सहदेव का बड़ा महत्व है। पांडवों में सबसे छोटे भाई थे सहदेव, जो महाराज पांडु की पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्रों में से एक थे। देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों के वरदान से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहा गया। वस्तुतः सहदेव नाम की ही बड़ी महत्ता है। आपको शायद पता ही हो कि पांडव प्रधानों में से एक होना ही सहदेव होना है। महाभारत के अनुसार जब इन जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे, और कालांतर में समय स्वयं इस सत्य का साक्षी बना। सहदेव सबसे ज्ञानी हुए। सहदेव अपने पिता और भाई नकुल की तरह पशुपालन और चिकित्सा में दक्ष थे, इसीलिए अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहां इन्होंने पशुओं की देखभाल करने वाले का काम किया था। तंतीपाल नाम से तब ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। सहदेव ने गुरु द्रोणाचार्य से धर्म, शस्त्र शास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर विविध ज्ञान अर्जित किया था, ग्रंथों की रचना की थी। तीन ग्रंथ सहदेव के नाम ही हैं, जैसे व्याधि संध विमर्दन, अग्नि स्त्रोत एवं शकुन परीक्षा। सहदेव को द्रौपदी से श्रुतकर्मा और दूसरी पत्नी विजया से सुहोत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वैसे माना जाता है कि इनकी दो पत्नियां और भी थी। सहदेव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये त्रिकालदर्शी थे। भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से जान लेते थे। वे भली भांति जानते थे कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध अटल है। सहदेव को पता था कि उस युद्ध में कौन किसको मारेगा, किसकी विजय होगी और कौन हारेगा। सहदेव स्वयं परशु अस्त्र के महान योद्धा थे। देखा जाए तो महाभारत सिर्फ महायुद्ध ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का भंडार है। महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उन्हीं में से एक है सहदेव का त्रिकालदर्शी होना। ज्योतिष विद्या तो सहदेव ने सीखी थी, पर वे जन्म से त्रिकालज्ञ नहीं थे। तब ये कैसे हुआ, इसके पीछे की घटना जानने लायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज पांडु को ऋषि किदम का शाप था। पांडु स्त्री समागम नहीं कर सकते, इसीलिए वे अपनी पत्नियों से यानी महारानी कुंती और मात्री से शारीरिक दूरी बनाए रखने को विवश थे। ऐसा न करना निश्चित ही मृत्यु को गले लगाना होगा, वे जानते थे। वैसे भी अंततः वही हुआ भी। ऋषियों के सिद्ध महापुरुषों के शाप अकाट्य होते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा ही रहा है सनातन ऋषि मुनियों का तपोबल। महाराज पांडु महाज्ञानी थे। वे अपने जन और जन के उद्देश्य को भली भांति जान गए थे। शापित होने के कारण वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उस समय वन में रहते हुए उन्होंने ध्यान और अत्यंत कठिन साधनाएं की, जिससे उन्हें ज्ञान और गूढ़ विद्या की प्राप्ति हुई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पांचों पुत्रों में चला जाए। चूंकि वो एक गुरु की तरह यह ज्ञान अपने पुत्रों को प्रदान नहीं कर सकते थे, तो अपने ज्ञान और विशेष विधा को पुत्रों में पहुंचाने के लिए उन्होंने पांचों पांडवों को निर्देश दिया कि यदि उनकी मृत्यु के बाद पुत्र उनके मस्तिष्क का कुछ भाग खा ले तो ऐसा करने से सभी पुत्रों को विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि महाराज पांडु ने अपनी विशेष साधना से यह रहस्य जान लिया था। अब पुत्रों के लिए ऐसा कर पाना असंभव था या नहीं था, यह बात निसंदेह तर्क संगत है। पर होनी को तो होना ही था। कुछ वर्ष बाद वही हुआ। महाभारत की कथा अनुसार सदा संयम का पालन करने वाले महाराज पांडु एक बार किसी विशेष परिस्थिति में पत्नी माद्री को देखकर कामासक्त हो गए। उसके बाद वही हुआ जो असंयम में होने का दुष्परिणाम होता है। मृत्यु ने तुरंत ही उन्हें अपने पास में जकड़ना शुरू कर दिया। मृत्यु को सामने देखकर पूरी तरह विवश हो चुके महाराज पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा कि अब मेरा अंतिम समय है, मृत्यु के पश्चात तुम सब मेरा मस्तिष्क खा लेना। लेकिन सहदेव के अलावा पांडवों में से कोई भी ये नहीं कर पाया। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर सहदेव ने अपने पिता महाराज पांडु का मस्तिष्क खाया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए। पहले को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं दिखने लगी। ये थी वो घटना जिसके बाद सहदेव त्रिकालज्ञ हो गए थे। सहदेव के त्रिकालदर्शी होने की जानकारी कौरवों को भी थी, इसीलिए महायुद्ध आरंभ होने से पहले दुर्योधन स्वयं सहदेव से मिलने आया था ताकि विजय मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी विजय हो सके। अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि सहदेव त्रिकालज्ञ थे तो उन्होंने अपनी विधा या सिद्धि को महाभारत को रोकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण। केशव से क्या छुपा था? श्री कृष्ण ने ही सहदेव को ऐसा करने से रोक रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से वचन लिया था और वचन तोड़ने पर भयंकर शाप का प्रावधान कर दिया था। उन्होंने सहदेव से कहा था, सहदेव तुम अपनी शक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति के कर्म और कर्म फल को निर्धारित नहीं कर सकते। यदि तुमने अपनी शक्तियों पर अभिमान करते हुए कभी किसी व्यक्ति के कर्म या पूर्व निर्धारित कार्य को बदलने का प्रयास किया तो क्षण भर में तुम्हारे मस्तिष्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि उनके ज्ञान का दुरुपयोग होने से सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। यदि कोई उनसे प्रश्न करे तो उन्हें ऐसे उत्तर देना चाहिए कि केवल ज्ञानी ही उसे समझ पाए, अन्यथा पापी दुराचारी इसका उपयोग अनाचार को बढ़ाने में करेंगे। श्री कृष्ण की बात को मानते हुए ही सहदेव ने महाभारत के मूल शकुनी द्वारा आयोजित द्रुत कीड़ा को नहीं रोका था ताकि काल चक्र के नियमों का उल्लंघन न हो। पर याद रहे कि युद्ध भूमि में सहदेव ने शकुनी को क्षमा नहीं किया, बुरी तरह मारा था। माना जाता है कि स्वर्ग के मार्ग में बढ़ते समय जब सहदेव की मृत्यु हुई तब उनकी आयु लगभग 105 वर्ष की थी।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।